الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے ہم شروع کریں گے. پچھلی آیت میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ کر لیا تو وہ ہدایت پا گیا صراط مستقیم کی طرف. یعتصم باللہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا. آج کے مضمون کی یہ بیسک آئیڈیا ہے جس پر اگلی چند آیتیں جس کے گرد گھومیں گی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اعتصام باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں ان کو ماننا ہے، اور لوگوں کا ساتھ چھوڑ کر اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جانا ہے. یہ اعتصام باللہ ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کو تھامنے کا، اللہ کے جڑنے کا مطلب روحانی ہی ہے، لیکن روحانی کا یہ پہلو کہ وہ کوئی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کوئی الہام اور اس طرح کا سلسلہ جڑ جائے گا، یہ نہیں مطلب ہے. بلکہ یہاں مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ خدا کی ان ہدایات کو مان لیں جو قرآن میں آ گئی، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو ہمارے آبا و اجداد کی طرف سے آ رہی تھیں، یا ہمیں جو ماں باپ نے بتائیں، ہمارے علاقے کے علماء نے بتائیں، ان کو چھوڑ دیں، ان چیزوں کو اپنائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول اب بتا رہے ہیں. یہ اعتصام باللہ کا مطلب یہ تھا. اس لیے آگے کہا کہ ہدیٰ الی صراط مستقیم، تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مان لے گا تو وہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی پا لے گا. تو اعتصام یہ ہے. پیچھے چونکہ بات چل رہی تھی کہ یہود کے جتنے اعتراضات تھے وہ بار بار اپنے نظریات کو لے کے آ رہے تھے کہ جناب ہمارے ہاں تو یہ ہے، قرآن میں تو یہ ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کو پکڑ لو، کیونکہ جس نے اللہ کو پکڑ لیا تو وہ صراط مستقیم کی ہدایت پا گیا. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر کھڑے ہو جائیں؟ اس کو اب اللہ تعالیٰ موضوع بنا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. تقوی عربوں کا ایک قدیم تصور ہے. تقوی کا مطلب تقوی کہہ لیں یا تقا کہہ لیں، دونوں عرب استعمال کرتے ہیں. یہ وہ ایک محمود وصف ہے، ایک اچھا وصف ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے برے انجام سے بچنا چاہتا ہے، برے نتائج سے بچنا چاہتا ہے. اور برے نتائج سے بچنے میں ظاہر ہے کہ حساب کتاب بھی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہیں، اور بھی جو دوسرے نتائج نکل سکتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے آدمی کے اندر جو ایک خوبی پیدا ہوتی ہے احتیاط کی اور ذرا خوف کی، وہ پیش نظر ہے. کہ آدمی تقوی کا مطلب لغوی، یعنی ایک میں اصطلاحی معنی میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، ان کے لغوی پہلو کی بات واضح کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر جو جملہ بولا گیا ہے وہ اس کے لغوی معنی کی طرف جا رہا ہے. کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کا تقوی اپناؤ جیسا کہ اللہ کا تقوی اپنانے کا حق ہے. تو اب یہ تقوی کیا ہے؟ تو تقوی وہ وصف ہے جس کی وجہ سے ایک انسان برے نتائج سے بچتا ہے. کہ مثلا وہ آدمی متقی ہوگا جو احتیاط سے چلے لغوی طور پر، وہ آدمی متقی ہوگا جو ایسا کام نہ کرے جس کا نقصان اس کو ہو جائے، یا ایسا کام نہ کرے کہ اس کے گھر والوں کو نقصان ہو. تو یہ تقوی ہے. اب اس تقوی میں بنیادی چیز خوف ہے، ہیبت ہے. ہیبت ہے نتیجے، برے نتیجے کی، یا اللہ کی ہیبت ہے یا کسی چیز کی. تو اللہ کے بارے میں تم ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے حوالے سے تم ایک طرح کے محتاط ہو جاؤ، اللہ کے حوالے سے تم سمجھدار بن جاؤ جیسا کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے حوالے سے ڈرا جائے، سمجھدار ہوا جائے. یہ مفہوم اس کا یہاں مراد ہے. اب جب اللہ کے حوالے سے ہم محتاط ہو جاتے ہیں، پرہیزگار ہو جاتے ہیں، اس لیے بعض یہ چونکہ جن لوگوں کو اس کا لغوی مطلب وہ پرہیزگار بھی ترجمہ کر دیتے ہیں. پرہیزگار کیا ہوتا ہے کہ اس کے معاملے میں احتیاط برتنے والا، کہ وہ اللہ کے حوالے سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. تو اب اللہ سے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اس طرح سے تقوی اختیار کیا جائے تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اور قیامت والے دن جو اس کا سامنا ہونا ہے، اس سارے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پوری ہوشیاری کے ساتھ زندگی اختیار کرنی ہے. اور یہاں جو بات چل رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو منوان قبول کر لینا ہے، خواہ وہ ہمارے کتنے ہی عقائد اور نظریات کے خلاف کیوں نہ ہوں. یہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہے. اور یہ تقوی کیا مرنے تک رہنا ہے. فرمایا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ جو فرما برداری کا رویہ ہے، یہ تمہیں مرنے تک قائم رہنا ہے اس کے اوپر. یہ نہ ہو کہ مرنے سے پہلے تمہارے اندر اسلام کا، فرما برداری کا، خدا کے آگے جھکنے کا، خدا کے تقوی کا جو عمل ہے وہ کمزور پڑ جائے یا ختم ہو جائے. اب آپ اتق اللہ اور انتم مسلمون کے جو مسلمون کا تعلق ہے وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مسلم اصل میں اس آدمی کو کہتے ہیں جو خدا کی فرما برداری اختیار کر لے اور بس اس پہ راضی ہو جائے، اس پہ ڈٹا رہے. تو اللہ کا تقوی کیا ہے؟ کہ ہم خدا سے برے نتائج کی توقع چونکہ رکھتے ہیں کہ کل قیامت والے دن ہونی ہے، تو ہم اس اندیشے سے اپنے آپ کو پرہیزگار بنائیں، اور پرہیزگار بنائیں اس طرح سے کہ پھر ساری زندگی اسی فرما برداری میں گزار دیں. تو گویا یہاں تقوی جو تھا وہ فرما برداری کا مطلب ہے، کیونکہ پیچھے یہ بات چل رہی ہے کہ یہود بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو تم مان لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مشہور آیتوں میں سے ہے، ہماری نصابی کتابوں میں بھی ہوتی تھی، کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، اور تفرقے میں نہ پڑو. اب یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے ہے مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور آگے ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اکثر مفسرین نے حبل اللہ سے مراد قرآن مجید لیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، سارے کے سارے مل کر تو تمہارے اختلافات ختم ہو جائیں. یعنی میں نے بھی قرآن کی بات ماننی ہے، آپ نے بھی قرآن کی بات ماننی ہے، زید نے بھی، بکر نے بھی، علی نے بھی، محمد نے بھی، سب نے قرآن کی بات ماننی ہے، تو اختلاف ختم ہو جائے گا. تو یہ حبل اللہ سے مراد یہ لیا گیا. حبل دراصل واسطے کے معنی ہوتے ہیں، اس کے اندر رسی کے بھی ہوتے ہیں لیکن واسطے کے معنی بھی ہوتے ہیں. کہ مثال کے طور پر ہم سب کا واسطہ، ہم ایک جملہ بولتے ہیں اللہ کے واسطے ایسا کر دو، تو کیا مطلب ہوتا ہے اس؟ کہ تم بھی اللہ کے بندے ہو، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تو اس واسطے سے میری بات مان لو، یہ کام نہ کرو، مجھے معاف کر دو. جو بھی معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو اس میں ہم اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ سے تعلق اپنا بتاتے ہیں، اس کا بھی اور اپنا بھی، اور اس واسطے سے ایک معاملہ کرتے ہیں. تو اب اللہ کے واسطے سے ہم سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، سارے آپس میں ہم اللہ کے واسطے سے جڑے ہوئے ہیں. سورہ نساء میں ہم جب پہنچیں گے تو اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یتساءلون بہی والارحام کا لفظ بولا ہے، کہ تم اللہ کے واسطے دے کے ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو. تو گویا ہم سارے کے سارے انسان دنیا میں جو بھی ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ کے حوالے سے ہمارا آپس میں ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے. تو اب جب مثال کے طور پر میں انحراف کر رہا ہوں کسی بات سے، تو اگر میرے اندر خدا کا خوف ہے، خدا کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا گمراہی میں. اور اگر مجھے اللہ کی پرواہ نہیں ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاؤں گا، کوئی روکنے والا ہی نہیں ہوگا. تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھ کے ساتھ، میرے ساتھ جڑنا ہے، اللہ کے اس واسطے کے ساتھ جڑنا ہے. اس واسطے کا ایک جز قرآن مجید ہے، تو خود اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لیا ہے، ورنہ اعتصموا بقرآن کہہ دیتے اللہ تعالیٰ. लेकिन वा तसिमु बिल कुरान नहीं कहा, अल्लाह ने कहा कि मेरे वास्ते से आपस मेरे वास्ते को थाम लो आपस में, मेरे साथ जो तुम्हारा ताल्लुक है मखलूक होने का उसको थाम लो। तो मेरे खालिक होने और अपने मखलूक होने का जो रिश्ता है ये तुम्हें भी आपस में बांधता है और मेरे साथ भी एक ताल्लुक कायम करता है। तो अल्लाह की खातिर, अल्लाह के वास्ते से, अल्लाह के रिश्ते से हम आपस में इकट्ठे हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। तो आजकल मैंने एक मौके पर किसी ने मेरे साथ कुछ सौदे में गलती की तो मैंने कहा यार खुदा का खौफ का, वो नाराज़ हो गए, इतने नाराज़ हो गए कि वो ऐसे लग रहा था कि मैंने कोई उनको कुफर का जुमला कह दिया। तो अब ये जो वास्ता ये भी कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है कि हम मैंने खुदा का खौफ इस मानी में नहीं बोला था कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, मैंने कहा खुदा का खौफ का ज़रा गौर कर लो, ध्यान कर लो कि क्या मसला। तो ये खुदा का खौफ जब हम जुमला बोलते थे तो उस वास्ते का हवाला देते थे कि जो हमें गुमराही से बचाने का बायस बनता है। तो अब अल्लाह का वास्ता ही है, अल्लाह के वास्ते से जुड़े रहना ये वो वाहिद रास्ता है कि जो मुझे और आपको मुत्तफिक करता। कुरान उसका एक हिस्सा है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि कुरान मजीद जो जिन लोगों ने मुराद लिया है उन्होंने कुल कर दिया, लेकिन यहाँ अल्लाह ने हब्लिल्लाह कहा था कि अल्लाह की रस्सी, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वसीले को जोड़े रखो, उसके साथ जुड़े रखो। और कुरान मजीद उसका एक हिस्सा है, दायरा अल्लाह की ज़ात से कलाम फूटा है तो वो हमारे पास मौजूद है। तो अल्लाह की राय जानने के लिए, अल्लाह की बात जानने के लिए हम कुरान के पास ही जाएंगे, फितरी सी बात है। लेकिन ये बड़ा एक तसव्वुर था, कुरान मजीद समेत, अल्लाह की ज़ात समेत, उसके खालिक और मखलूक होने के रिश्ते समेत सारी बातें इसमें जुड़ी हुई हैं। तो अल्लाह के साथ, अल्लाह के वास्ते से हम अल्लाह के वास्ते को थामे रखें, अल्लाह के साथ जो हमारा ताल्लुक है उसको थामे रखें, जमीयन सब के सब मिलकर। अब जमीयन के ऊपर ज़ोर है यहाँ पर इस मानी में कि अकेले अकेले जो लोग रह जाते हैं कि भाई मैं किसी और से जुड़ गया अल्लाह के वास्ते, आप किसी और से जुड़ गए, तो ये नहीं होना चाहिए। हम सारे के सारे अल्लाह के गिर्द जमा हो जाएं, अल्लाह के गिर्द जमा हो जाएं सारे के सारे। जब अल्लाह के गिर्द जमा होंगे तो फिर खुदा का खौफ जो है, जो ऊपर गुजरा है कि अल्लाह से तकवा इख्तियार करो, वो उसकी बुनियाद बनेगा। तो अल्लाह का तकवा इस बात की बुनियाद है कि खुदा के साथ जो जुड़ने का हमारा अमल है वो मुत्तफिक हो जाए, कि सारे के सारे लोग खुदा से जुड़ें, खुदा के वास्ते से जुड़ें। उसके लिए ज़रूरी है कि खुदा का खौफ मौजूद हो। वला तफर्रकू, तफर्रकू जो है ये बहुत मुश्किल मकाम पे आया है। ये जिस तरह से आगे आयात हैं इसको दो कम से कम मानी इसमें अल्लाह ने पैदा कर दिए हैं। एक जमीयन के लिहाज से कि सारे के सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को थाम लो, अलग अलग ना हो, कोई खुदा के खौफ वाला है, कोई खुदा का खौफ छोड़ बैठा है, कोई इस तरह का, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा पहलू यह है कि दीन छोड़कर अलग ना हो जाओ, जिसको हम फिरकेबंदी कहते हैं, फिरकेबंदी ना करो। एक यह कि खुदा का वास्ता छोड़कर बिखर ना जाओ, इकट्ठे होकर आओ, अलग अलग ना हो। और दूसरा मतलब ये निकल रहा है कि दीन में तफरके पैदा ना करो, दीन में फिरकेबंदी ना करो, ये दूसरा मतलब निकल रहा है। अब मैं आगे चलकर वाजे करूंगा कि ये दोनों मतलब कैसे निकल रहे हैं, ये आगे इसके करीने मौजूद है। लेकिन मसला यही है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है, अलग अलग फिरके फिरके नहीं होना है। अब आगे अल्लाह ताला ने बताया कि मैं तुमसे ये मुतालबा क्यों कर रहा हूँ। अल्लाह के एतसाम के लिए अल्लाह ने बताया कि तकवा इख्तियार करोगे और मेरे वास्ता, जो मेरा तुम्हारे दरमियान एक वास्ता मौजूद है, उसको मजबूती से थामोगे। उसमें अब तुम्हारा खालिक और मखलूक का रिश्ता भी मौजूद है और अल्लाह की किताब भी मौजूद है, इसको मजबूती से थाम लेना और सारे मिलकर थामना। तुम सब का फैसला एक ही होना चाहिए कि हमने अल्लाह की बात माननी है, अल्लाह के खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, बस ये तुम्हारा फैसला होना चाहिए। और इसमें तुम्हें फ़र्क नहीं करना, फिरकेबंदी नहीं, कोई और रास्ता इख्तियार नहीं करना, सब मिलकर जुड़कर ये रास्ता इख्तियार करें कि अल्लाह की बात माननी है, अल्लाह के खौफ पे कायम रहना है, सब मिलकर ये फैसला कर लें। वस्करू नेमत अल्लाह अलैकुम, और अल्लाह की नेमत को याद रखो जो उसने तुम्हारे ऊपर की है। इज़ कुंतुम आदान फअल्लफ बैना कुलूबेकुम, के याद करो कि तुम दुश्मन थे तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया है। फअस्बहतुम बिनेमतिही इख्वाना, और अल्लाह के ख़ास फजल से तुम भाई भाई बन चुके हो। ये उस तफरके की तरफ जा रहा है कि जो दुश्मनी पैदा करता है, जो एक दूसरे के साथ हम इख्तलाफ करते हैं एक दूसरे के। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने अपने ख़ास फजल करम से तुम्हें भाई भाई बना दिया है, तो अब तफरका ना करना, भाई भाई ही रहना। ठीक है, भाई भाई ही रहना तो क्या मतलब हुआ कि वो जो अल्लाह का वास्ता है और जो तफरकों का रोका गया है उसमें ये पहलू रहे कि मुसलमान को अगर कोई किसी मसले में गलती लग रही है तो है मेरा भाई है, आओ मिलकर अल्लाह के हवाले से मसले को हल करते हैं, आओ मिलकर अल्लाह के हवाले से, अल्लाह की खौफ से, अल्लाह के तकवे के साथ इस मसले को हल करते हैं। मेरे और तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया तो कोई बात नहीं, दोस्ती भाईचारा रहना चाहिए क्योंकि अल्लाह ने अपने फजल से तुम्हें भाई भाई बना दिया। दूसरी वजह बताई कि मैं तुमसे ये मुतालबा क्यों कर रहा हूँ। वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिन मिनन नार, तुम आग के बिल्कुल किनारे पर खड़े थे, फअनकज़कुम मिनहा, तो अल्लाह ने तुम्हें धकेल कर उससे बचा लिया जोर लगाकर। अब तफर्रकों का दूसरा पहलू, पहला पहलू था कि दुश्मनी आपस में नहीं होनी, भाई भाई रहना है, और दूसरा पहलू के गुमराह होकर दोजख में नहीं जा करना। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें दोजख से निकाला है, बचाया है, और तुम्हारे अंदर भाईचारा पैदा कर दिया है। इन दोनों को कायम रखना, वाला तफर्रक, इसमें आपस में बिगाड़ पैदा ना कर लेना। भाईचारा भी तुम्हारा कायम रहे और दोजख से बचने का अमल भी कायम रहे। दोजख से बचने के लिए ज़रूरी है कि दीन पूरा अपना लिया जाए, खुदा खौफी की जाए, और भाईचारे को कायम रखने के लिए भी ज़रूरी है कि अल्लाह के वास्ते से एक दूसरे के साथ जुड़ा जाए और अल्लाह का खौफ कायम रखा जाए। तो आप देख लीजिए कि जो मैया तसम बिल्ला था उसको अल्लाह ताला ने ए तसमो बिहब्लिल्लाह से बयान किया, और फिर उसका तरीका भी बताया और उसकी वजह भी बताई कि मैं तुमसे अब यह मुतालबा क्यों कर रहा हूँ। दोबारा मैं दोहरा देता हूँ क्योंकि मजमून अहम है। हमारी जो उम्मत के इस वक्त खलफशार है उसका हल इसी नुस्खे में मौजूद है जो इन आयतों में बयान किया गया है। क्या ईमान वालो, अल्लाह को मजबूती से थाम लो। अल्लाह को मजबूती से थामने के लिए ज़रूरी है कि तुम तकवे को इख्तियार करो, और तकवा इख्तियार करने के लिए ज़रूरी है कि तुम अल्लाह के वास्ते को पकड़ के रखो, अल्लाह का वास्ता तुमसे ना छूटने पाए। और अल्लाह का वास्ता क्या है कि अल्लाह ताला खालिक और मखलूक के रिश्ते में हम उसके जुड़े हुए हैं, सारे के सारे हम अल्लाह के बंदे हैं। और दूसरा, अल्लाह का वास्ता कुरान मजीद की सूरत में मौजूद है। कुरान मजीद को अपनाना पड़ेगा और अल्लाह के वास्ते से जो हमारा रिश्ता है उसको कायम रखना पड़ेगा, और इसमें पूरी एहतियात करनी पड़ेगी कि हम इस मसले में तफरके में ना पड़ें। अल्लाह के वास्ते को भी पूरी तरह से अपने साथ जुड़े रखें और कुरान मजीद के साथ भी जुड़े रखें। अल्लाह के वास्ते से जुड़े रहेंगे तो भाईचारा कायम रहेगा, और अल्लाह की किताब के साथ जुड़े रहेंगे तो दोज़ख से बच जाएंगे। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, इस तरह से अल्लाह ताला अपनी बातों को वाज़ेह कर देते हैं ताकि तुम हदायत पाओ। ये अल्लाह ताला की जो हमारे ऊपर एहसान है कि अल्लाह ताला अपनी बातों को अपने लफ्ज़ों में बयान कर देते हैं। युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही में असल मानी यही हैं जो मैंने अभी किए हैं कि अल्लाह ताला अपनी बातों को खुद बयान कर देते हैं। जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने अहम हमें मशवरे दिए हैं और जहाँ अहम फैसले सुनाए हैं अल्लाह ताला ने अपने, वहाँ पर यह सलूक इख्तियार किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ने अपने अल्फाज में तुम्हें एक बात कह दी है, अब तुम इसे फिर नहीं सकते हो, अब तुम इसे फिर नहीं सकते हो, क्योंकि अल्लाह ने अपने लफ्ज़ों में एक बात तुम्हें समझा दी है। और बाज़ात अल्लाह ताला ये करते हैं कि फैसला अपना सुनाते हैं तो पीछे जो बात चली होती उसमें पूरी तफसील जब होती है कि करना क्या है, कैसे करना है, क्यों मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ, तो तो वो सारी बातें जो है वो जब इसमें आ जाती हैं तो फिर ये एक और तरह की चीज़ बन जाती है। इसलिए अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि तुम्हें मैंने अपनी बातें बयान कर दी। तो ये वाज़े करने के मानी में लफ्ज़ नहीं आता, बस दो टोक बयान कर देने के मानी में आता है कि अल्लाह ताला ने अपनी बातें तुम्हें वाज़े कर दी हैं। वाज़े कर दी हैं यानी बयान, वाज़े लफ्ज़ों में कह दी हैं। वाज़े करने के दो मानी होते हैं, एक ये कि पहले आपने एक मुख्तसर बात कही थी अब उसकी तफसील कर रहे हैं, ये भी वाज़े करना होता है। और एक वाज़े करना होता है कि आपने पहली ही दफ़ा खुले वाज़े अल्फाज में बात बयान कर दी, तो ये जो बात बयान कर दी वाज़े खुले अल्फाज में उसके लिए जुबैन का लफ्ज़ आता है। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी आयतें खुद खुल कर वाज़े दो टोक लफ्ज़ों में बयान कर दी हैं। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पा जाओ। अब ऊपर देखिए कि जो मैं या तसिम बिल्लाही फ़कद हुदिया इला सिरातिन मुस्तकीम, पूरी बात थी कि अल्लाह को मजबूती से जुड़े रहो अल्लाह के साथ, तो जिसने ऐसा कर लिया वो हदायत सिरात मुस्तकीम की हदायत पा गया। अब उसका पूरा तरीका अल्लाह ने बताया ताकि तुम हदायत पर आ जाओ, तुम्हें हदायत हासिल हो जाए। तो अब हदायत क्या हासिल हुई हमें? कुरान मजीद और नबी अकरम सल्लम को हमने मानना है, उनकी बातों को तस्लीम करना है, लाजमी तौर पर मुस्लिम बनकर रहना है, और इस सारी चीज़ पर कायम रहने के लिए हमें अल्लाह का तकवा इख्तियार करना है। अल्लाह का तकवा जो है उसमें दो, अल्लाह के तकवा इख्तियार करना है और अल्लाह के वास्ते के साथ बहम जुड़े भी रहना है, और इसमें ना भाईचारा ख़त्म करना है ना दीन में नए रास्ते निकालने हैं, तफरीका पैदा नहीं करना। भाई अगर हम एक दूसरे को दुश्मन समझेंगे तो हमारी भाईचारा ख़त्म होगा, और अगर हमने दीन के अंदर नए रास्ते निकाले तो दोज़ख की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए दोनों बातों को मजबूती से थाम लेना है कि हमने आपस में अल्लाह की वजह से जुड़े रहना है, और हम अल्लाह की वजह से, नबी अकरम ने एक खुतबे में यह जुमला भी फरमाया था कि हम अल्लाह की खातिर दुश्मनी करते हैं, अल्लाह ही की खातिर दोस्ती करते हैं। तो वो यहाँ पर मज़मून यहाँ से माखूज है कि हमने अल्लाह के वास्ते से जुड़ना है। तो जो अल्लाह का बंदा है बस वो हमारा भाई, और जो दीन में से निकल जाएगा वो ज़ाहिर है कि हमसे अलग हो सकता है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि उसको वापस लाना है हदायत के ऊपर, अल्लाह के दीन के ऊपर। अब ये एक तो वजह, एक अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह का एहतसाम करना है, फिर एहतसाम बिहब्लिल्लाह करना है, और फिर उसकी एक तफसील बताई। अब अगली अल्लाह ताला बात वाज़े फरमा रहे हैं, ये भी उतनी ही अहम है जितनी पिछली बातें अहम हैं। वल तकुन मिनकुम उम्मतिन यदऊना इलल खैर व यामरूना बिल मारूफ व यनहऊना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये भी मशहूर आयतों में से है, अक्सर पढ़ी पढ़ाई जाती हैं। और चाहिए कि तुम में एक ग्रोह हो जो खैर की तरफ बुलाए, मारूफ की तरफ का मशवरा दे, मुनकर से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ऐसा करने वाले ही फलाह पाएंगे। जितनी तहरीकें पाकिस्तान हिंदुस्तान में बनती हैं वो सारे इस आयत को पढ़ती हैं कि तुम में एक उम्मत होनी चाहिए, एक जमात होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने तो एक जमात का कहा था, हमने 2000 बना ली, क्योंकि ये मुझे और आपको हुक्म नहीं था, ये पूरी उम्मत इस्लामिया को हुक्म है कि वो अपने अंदर एक जमात कायम करें। मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है ये हुक्म कि अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को कह रहे हैं या अय्युल्लज़ीन आमनु, उसे बात शुरू की है, या ईमान वालों तुम में, तुम्हारे अंदर एक उम्मत होनी चाहिए, एक जमात होनी चाहिए, ये नहीं कि तुम अपनी अपनी जमातें बना लो, एक उम्मत होनी चाहिए तुम में, एक ग्रोह होना चाहिए, एक जमात होनी चाहिए जो ये काम करेगी। तो एतसाम बिहब्लिल्लाह के लिए, या तसम बिल्लाह के लिए, तफरके से बचाने के लिए और दोज़ख से बचाने के लिए और भाईचारे को कायम रखने के लिए तुम्हारे अंदर एक जमात तुम्हारी तरफ से मुकर्रर होनी चाहिए जो ये तीन काम करेगी, वो आगे चलकर हम देखते हैं। अब इसमें फितरी सी बात है कि उम्मत को एक अपना ये जमात तैयार करनी है जो ये काम करेगी, पूरी उम्मत को ये एक ही जमात बनानी है। अगर अलग अलग बना लेंगे तो वही हाल होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है कि देवबंदी अलग, बरेलवी अलग, अहले हदीस अलग, वो ये काम करते रहते हैं अपना अपना और कोई भी इत्तेहाद पैदा नहीं होता। अब मैं एक मिसाल से बात को समझा कर फिर वापस आऊँगा। पाकिस्तान के क्रिकेट मैच देखते हुए कोई देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस होता है तो पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान इन तीनों चारों मसालिक को मुत्तहिद कर देता है। ठीक है, तो इस तरह का एक ग्रोह होना चाहिए जो जो वजूद पाकिस्तान का है कि देवबंदी भी जुड़े हुए हैं, बरेलवी भी जुड़े हुए हैं, अहले हदीस भी जुड़े हुए हैं, शिया भी जुड़े हुए हैं। सारे क्रिकेट के मैच में पाकिस्तान हार रहा हो तो दुखी हो रहे होते हैं, जीत रहा हो तो नारे लगा रहे होते हैं। तो इस तरह का ये ग्रोह होना चाहिए जिसके साथ सारे ही मसालिक जुड़ सकें, वरना इत्तेहाद पैदा नहीं होगा, वरना इत्तेहाद पैदा नहीं होगा। जैसे नहीं हो रहा, हमारी सारी मस्जिदें अलग अलग राग अलापती हैं, हमारे मदरसे अलग अलग काम करते हैं, अलग से एक दीन पढ़ा देते हैं, बस नतीजा क्या निकलता है कि मस्जिद मस्जिद नहीं रहती, मस्जिद के साथ वो ताल्लुक ही नहीं बनता कि एक बरेलवी अहले हदीस की मस्जिद में जाए और अपने आप को खुदा के पास महसूस करें। वो वहाँ यही घुटन महसूस करता है कि अच्छा मैं तो यहाँ अजनबी हूँ, और एक अहले हदीस दूसरी मस्जिद में जाकर ऐसे ही महसूस करता है। तो मस्जिद का इदारा ऐसा होना चाहिए था कि सार का सबका एक जैसा, जैसे हम खाना काबा जाते हैं तो सब फिरके ख़त्म हो जाते हैं, मस्जिद नबी जाते हैं तो सारे फिरके ख़त्म हो जाते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं होता? इसलिए कि हमने वो एक मरकज़ी जगह ही नहीं बनाई कि जो सारे मसालिक को एतसाम बेहबलिल्लाह की बुनियाद पर जोड़ सकें। हम तो जोड़ते हैं देवबंदियत के नाम पर, बरेलवियत के नाम पर, अहले हदीसियत की बुनियाद पर, हम अल्लाह की खातर जोड़ते नहीं। तो अल्लाह की खातर जो महकमा बनेगा वो महकमा यहाँ, वो ग्रुप यहाँ जिर बहस। अब वो हमारे पास चुके हम मिल्लत अब मुल्कों में बटी हुई है तो हम मुल्क की सतह पर काम कर सकते हैं, मिल्लत की सतह भी कर सकते हैं, अगर सारे मुल्क मिलकर करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मुल्क की सतह पर कर लें या मिल्लत की सतह पर करें तो हर मुल्क में एक ग्रुप होना चाहिए। मैं उसको महकमे का लफ्ज़ बोल रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट वाज़े हो कि असल में हुकूमत पाकिस्तान मिसाल के तौर पर एक इदारा ऐसा बनाए कि जो सियासी मफाद के लिए मज़हब को इस्तेमाल करने के लिए ना हो, किसी फिरके और मसलक को, जो हमारी नज़रियाती कौंसल है उसमें मेरा नाम भी एक दफ़ा पेश किया गया मेंबर बनने के लिए, तो जिन असूलों पर मुझे नहीं लिया गया और जिन असूलों पर कुछ दूसरे लोगों को लिया गया है वो मेरे सामने आए, वो सारे सियासी थे, सियासी थे, बेहबलिल्लाह की वजह से नहीं थे। तो अब ये जो जहाँ जो अल्लाह ताला मुतालबा कर रहे हैं वो ये कि मेरे तकवे के साथ, मेरे वास्ते के ज़रिए से और कुरान मजीद के वास्ते के ज़रिए से एक ऐसा महकमा, एक ऐसी जमात, एक ऐसे लोगों की टीम बनानी है जो ये काम करेगी, तो वो मसालिक की बुनियाद पर नहीं बनी होगी। कोई मसलक भी बेहबलिल्लाह पे साथ नहीं जुड़ा होता, अगर जुड़ा होता तो वो ख़त्म हो जाता, मिल्लत के अंदर गुम हो जाता। तो मिल्लत के अंदर जब कोई मसलक गुम नहीं होता तो इसका मतलब बेहबलिल्लाह नहीं, बेहबल फ़िरकते ही, वो अपने फ़िरके के साथ जुड़ा होता। तो ये नहीं होना चाहिए, आप तो मिल्लत के साथ जुड़कर एक बने, ये लाजम है जो इन आयतों के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो वलतकुम मिनकुम उम्मा, तुम्हारे अंदर एक ग्रोह होना चाहिए जो काम क्या करेगा, यदऊना इलल खैर, जो भलाई की तरफ बुलाएगा, व यामरूना बिल मारूफ, नेकी का हुक्म या मशवरा देगा, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकेगा। अब ये तीन काम, पहले दो काम तो लगता है कि बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन फ़र्क है। यदूना इल खैर का मतलब होगा कि भलाई की तरफ दावत देता है। ये सादा दीन बताने का मतलब है कि आइए नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, आइए नेकी का अदल करते हैं, इंसाफ करते हैं। यदूना इल खैर का मतलब ये है। लेकिन या मरूना बिल मारूफ, उससे अगली स्टेज, वो ज़बरदस्ती रोकेंगे, हुक्म देंगे कि ये करना। यामरून अब यदूना से मुख्तलिफ होना चाहिए, वरना अगर यामरूना बिल मारूफ का मतलब ही दावत कर दें तो पीछे से बस आ गया है। दोबारा दोहराने की वजह क्या है? तो पहला ये है कि वो दावत देंगे दीन की तरफ, दीन सिखाएंगे, नेकी सिखाएंगे, आपको बताएंगे भाई ये नेकी का करने का काम है, नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रखना है, अदल करना है, बीवियों के हकूक़ पूरे करने हैं, शोहरों के हकूक़ पढ़ने हैं, बच्चों की सही तरबियत करनी है, चोरी नहीं करनी, ये नहीं करना। ये वो यदून अल खैर कर रहे होंगे। व या मरून बिल मारूफ का मतलब है कि कुछ चीज़ों में वो कानून के तौर पर नाफिज भी करेंगे और सख्ती से मनवाएंगे भी, ठीक है। व यनहौन अनिल मुनकर, और बुराइयों से ज़बरदस्ती रोकेंगे भी, ठीक है। आपका कोतवाल आ गया, पुलिस आ गई, सारा कुछ इसमें आ गया, वरना यदूना काफ़ी था, यदूना खैर काफ़ी। आगे जो दो बातें बताई हैं, तो अब अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि तुम्हारे मुल्क में, पूरी उम्मत में एक ऐसा महकमा होना चाहिए कि जो, जिसका असल काम तो नेकी की तरफ बुलाना हो, लेकिन अगर लोग ना आए तो ज़बरदस्ती भी नेकी करवाएगा। वो दायरा वाज़े है अलग से कि कहाँ कहाँ वो सख्ती कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, और जहाँ पर तुम कोई मुनकर कर बैठोगे तो वो ज़बरदस्ती आ जाएगी रोकने के लिए। तो हदूद व ताज़ीरात का सारा कानून इसके तहत है, पुलिस का महकमा इसके तहत है, और जो हुकूमतों को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि कुछ चीज़ों, पॉजिटिव चीज़ों में भी सख्ती कर सकते हैं, वो भी इसमें बयान हो गया। तो अब ये जो महकमा होगा, ये आपको फिरके बनने से रोकेगा, ये आपको क्रिकेट मैच के वक्त देवबंदी और बरेलवी होने से रोकेगा, ये आपको नमाज पढ़ते हुए देवबंदी बरेलवी होने से रोकेगा। फर्क सिर्फ इतना है। तो वल्तकुम मिनकुम उम्मतिन यदूना इलल खैर व यामरून बिल मारूफ व यनहून अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ऐसा करने वाले ही फलाह पाएंगे। तो अब ये अल्लाह ताला कह लीजिए कि महकमा कह लीजिए, पूरी उम्मत में एक इदारा कह लीजिए, अलग अलग मुल्क हैं तो अलग अलग मुल्कों में कोई इदारा कह लीजिए, वो अल्लाह ताला उम्मा के लफ्ज़ के बयान कर रहे हैं। उम्मा का मतलब जमात, लोगों की जमात। तो लोगों की एक जमात होनी चाहिए, एक टीम होनी चाहिए जो ये काम करेगी, और वो नेकी की तरफ बुलाएगी, मारूफ का हुक्म देगी, सख्ती से रोक देगी बुराइयों के ऊपर। तो ये अब अल्लाह ताला ने पूरा ज़ाब्ता बता दिया है कि हमने फिरके बंदे से कैसे बचना है और क्या मामला करना है। हमारा जो ये जो गलत को मिन को उम्मा वाला काम है, ये सहाबा के ज़माने में तो मौजूद था, गालबन बनो में या बनो अब्बास के ज़माने में मौजूद रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो गया। उसकी शक्लें ये थी कि खलीफा वक्त जुमा पढ़ाता था, फैसले कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर होते थे, अदालतें इसी असूल पर चलती थी, और जो दावत और नेकी का काम है वो सरकार की निगरानी में होता रहता था। जैसे ही सरकार ने अपने हाथ पीछे खींचे तो मैंने और आपने ये जगह ले ली, चुनाचे अब मेरा फिक्र आपका फिक्र लोगों को नए नए मसालक में ढाल देता। तो अगर अल्लाह ताला के रसूल का कायम करदा ये उसवा कायम रहता कि रियासत मज़हब के लिए ये खिदमत अंजाम देती, तो यकीनन इतने फिरके ना बनते। फिर फिरके नीचे चलते रहते हैं, हल्के फुल्के इख्तलाफात वो होते रहते हैं, लेकिन वो इतने ताकतवर नहीं हो पाते जितने ताकतवर हमारे मुल्कों में हो गए। और जिन मुल्कों में अभी भी मज़हब पर स्टेट का कंट्रोल होता है, वहाँ अभी भी फिरके कम होते हैं, आप मुताला करके देख लीजिए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।